संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे।
भक्तमाल श्रृंखला में आज चरित्र करते हैं श्री खोजी जी का, चतुरदास उर्फ खोजी जी। हरी सो जग वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। प्रथम श्रोता आप हैं श्री राधे श्याम सीताराम, दूजो हैं रसखान। आपके सभी भक्तों संतों के चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। श्री खोजी जी, इनका नाम था चतुरदास जी। ये भगवान के बड़े भक्त थे। बचपन से ही, जब से ये पैदा हुए, ये भगवान नाम का जाप किया करते थे, भगवान में तन्मयता थी। जब ये छोटे थे, इनके पिताजी गुजर गए। पिताजी के देहावसान के बाद उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए इनके भाइयों ने कहा ये गंगा जल में विसर्जन करनी है, तो आप चले जाइए कुछ लोगों के साथ में। इन्होंने कहा जहाँ हरि नाम है वहीं गंगा जी हैं, गंगा जी और हरि नाम पृथक तो है नहीं, तो हरि नाम का बोल करके आप जहाँ इन्हें विसर्जन कर दोगे वही गंगा जल बन जाएगा। उन सब लोगों ने इनकी बात को बहुत ही हल्के में लिया और उन्होंने इनको डांटा भी कि तुम इस तरीके से बात कर रहे हो कि हरि नाम बोलने से कोई भी कुछ भी गंगा जल बन जाएगा, क्या बोल रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो, जाओ और गंगा जी में इन्हें विसर्जन करके आओ। इन्होंने कुछ लोगों को साथ में लिया, अस्थियाँ ली और ये, क्योंकि उनका विश्वास नहीं था, हरि नाम में उनका विश्वास ही नहीं था, और ये हरि नाम रटते हुए चल दिए। रास्ते में ही एक चमत्कार हुआ कि तीन उन्हें दिव्य स्त्रियां मिली, देवियां, तीन देवी मिली रास्ते में। तो इन्होंने उनको प्रणाम किया, सब लोग थे साथ में, तो उन प्रणाम किया, पूछा कि आप कौन। उन्होंने कहा मैं गंगा जी, मैं यमुना जी, मैं सरयू जी। तीनों मिली कि गंगा, यमुना, सरयू, और बोले तुम अपने पिताजी की जो अस्थियां लेके जा रहे हो हम इन्हें लेने आए हो, हम स्वयं ही इन्हें स्वीकार कर लेती हैं। और उन्होंने वहीं पे उनके सबके देखते देखते ही, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन चल रहा था ना, इनका हरिनाम लगातार सबसे बुलवाते हुए जा रहे थे, और वहाँ पे सामने ही एक छोटा सा सरोवर था, और इनके देखते देखते ही वो सरोवर में समा गई, और उनका जो जल इतना निर्मल, जैसे गंगा जल होता है इतना निर्मल वो जल हो गया। सबने प्रत्यक्ष देखा वो जल बदलते हुए, इन तीनों देवियों को उसमें समाते हुए। इन्होंने वो अस्थियाँ वहीं पर विसर्जन की, और विसर्जन करके परिक्रमा करके प्रणाम करके जो भी पूजन करके वहाँ पे आए, और इस चमत्कार को इनके घर वालों ने माना, तब वो मान गए कि भाई हरि नाम में वो शक्ति है, आप किसी भी जल को हरि नाम लेके गंगा जल बना सकते हो, गंगा जी स्वयं प्रकट हो जाएंगे हरि नाम से, तो हैं ही वही हरि का चरणामृत हैं गंगा जी, तो हरि नाम में वो शक्ति है। अब इनका नाम खोजी जी कैसे पड़ा चतुरदास जी का, वो भी कथा है। इनके गुरुजी थे, तो गुरुजी के यहाँ पे ये तन्मयता से उनकी सेवा करते थे, गुरुजी में भावना भगवान की तरह थी इनकी। तो एक बार बूढ़े हो चुके थे गुरुजी, जब गुरुजी पेशाब करने के लिए चले तो ये पकड़ के लेके जाते थे गुरुजी को, गुरुजी को इन्होंने बैठा दिया, बैठा के उन्होंने पेशाब किया गुरुजी ने, और पेशाब करके वो उठे, इन्होंने हाथ वात धुलवाए, कुल्ला कराया, गुरुजी हंस रहे थे, हंसते हंसते उठे। इन्होंने पूछा गुरुजी हंस क्यों रहे हैं आप, इतने हंस क्यों रहे हो, बोले अरे छोड़ो तुम, बोले नहीं नहीं गुरुजी बता दो हंस क्यों रहे हो, बोले तू कैसा चेला है, गुरु की सेवा कैसे करेगा अगर तुझे गुरुजी की मन की बात नहीं पता होगी, तो गुरुजी की मन की बात पता होगी तब तो उनके मन भावती सेवा करेगा, तुझे पता ही कुछ नहीं है, जब पता कर हमारे मन में क्या चल रहा था, क्यों हंस रहे थे हम, और जब तक पता ना चल जाए हमारे सामने मत आ जाना, दर्शन ना दे दिए अपने, निकल यहाँ से। उनको निकाल दिया। अब गुरुजी की भी महिमा थी वो ही जाने, ये वहाँ से निकल दिए, भटकते रहे, गुरुजी क्यों हंस रहे थे, गुरुजी क्यों हंस रहे थे, क्या कारण था, कहीं पे भी वो कोई रामायण का, वेद का, या भागवत महापुराण का, गीता जी का कोई सूत्र, कोई मंत्र तो है नहीं जिसका अर्थ कोई भी बता दे। ये बहुत जगह गए, बहुत सारे संत मिलते थे, जहाँ जहाँ गए संतों की भीड़ में गए, उनसे पूछते थे हमारे गुरुजी क्यों हंस रहे थे, कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ बोल दे, इनको सही संतुष्टि नहीं हुई। जब इन्हें फाइनली पता चल गया कि हमें उत्तर नहीं मिलने वाला है हमारे गुरुजी क्यों हंस रहे थे, इन्हें लगा गुरुजी के दर्शन हम कर नहीं सकते, गुरुजी ने आज्ञा दी है वापस आना मत, और गुरु दर्शन के बिना हमें रहना नहीं है, अब ये जीवन हो गया व्यर्थ, अब इसे त्यागना ही ठीक है। तो ये समझ के जंगल की ओर चल दिए, और इन्होंने प्रण कर लिया अब हम कुछ खाए पियेंगे नहीं, अपना शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, गुरु दर्शन नहीं होंगे, गुरु दर्शन नहीं होंगे तो भगवत भजन नहीं बनेगा वैसा, तो हम शरीर ही छोड़ देते हैं। ये बैठ गए एक पेड़ के नीचे और वहाँ पे नाम जाप करना इन्होंने शुरू कर दिया। नाम जाप करते 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 कई दिन बीत गए, ये भूखे प्यासे इनकी मरणासन स्थिति आई तो कबीरदास जी प्रकट हुए। कबीरदास जी इनके पास आए, इन्होंने कबीरदास जी से इन्होंने चरणों में प्रणाम किया, मिले। कबीरदास जी ने बताया कि हम बताते हैं आपके गुरु जी क्यों हंस रहे थे। तो उन्होंने सार बताया कि जहाँ पे तुम्हारे गुरुजी ने मूत्र विसर्जन किया है, जहाँ पेशाब किया है, वहाँ पर पीपल के नीचे साफ करके झाड़ू लगा करके पत्ते और पीपल के बीज इकट्ठे थे, तो जब वो पेशाब कर रहे थे तो पेशाब में बह करके वो बीज भाग रहे थे, तो वो भागे तो उन्हें हंसी आई। हंसी किस लिए आई? बोले हंसी इसलिए आई कि ये बीज जो पीपल के वो बीज थे, पत्ते थे, ये जब तक पीपल पे ऊपर लगे हुए थे इनका सम्मान हो रहा था, इनकी पूजा होती थी, आज ये मूत में बह रहे हैं। तो इसी प्रकार से जीव जब तक ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, जब तक वो भगवान से, तो उसकी पूजा होती है, उसका सम्मान होता है जब वो भगवान से जुड़ा है तो। और जब वो भगवान से विमुख हो जाता है, इस माया के चक्र में फंस जाता है, उसकी यही गति होती है कि वो मूत्र में जैसे लौटता फिरता है ना, तो ऐसे ही उसकी दुर्गति होती है जीव की। तो वो इसलिए हंसे थे। इनकी समझ में आ गया, हाँ तार्किक था गुरु का हंसना, कि जीव की दुर्गति होती इसीलिए है कि वो भगवान से विमुख रहता है, माया के चक्र में पड़ जाता है, इसलिए वो मूत्र में ही उसका दौड़ना भागना बहना ये हो रहा है, वास्तविकता यही है। ये जो दुख हैं ये वही तो प्रकट कर रहे हैं। उनकी समझ में आए, वापस आए गुरुजी के पास। गुरुजी के पास आने आके इन्होंने उत्तर दिया, गुरुजी संतुष्ट हो गए, अति उत्तम भाई। इन्होंने फिर से गुरुजी ने सेवा में रख लिया, भाई सेवा में रहे हमारी। कुछ दिन के बाद गुरुजी, काफ़ी एज हो गई थी गुरुजी की, गुरुजी को शरीर त्यागना था, तो इनको भेजा हुआ था गुरुजी ने किसी काम के लिए बाहर। इधर गुरुजी के शरीर छोड़ने का समय हो गया था, तो गुरुजी की जो चारपाई जो लगी हुई थी, जो उनका जहाँ पे विश्राम करते थे, वो आम के पेड़ के नीचे थी। ठीक जहाँ पे वो लेटे हुए थे, ठीक ऊपर आम के फल लगे हुए थे, और उनमें से एक आम का बड़ा सुंदर पका हुआ फल भी था। तो उनका देहावसान हो गया, मतलब वो चले गए। और गुरुजी ने कहा था पहले कि जैसे ही हम शरीर छोड़ेंगे, उन्होंने एक घंटा बंधवा दिया था कि एक घंटा बजेगा हमारे शरीर छोड़ते ही, क्योंकि हमारा भगवत धाम गमन हो जाएगा, हम भगवान से मिल जाएंगे, भगवान से मिलेंगे तो घंटा बजेगा। इधर क्या हुआ कि उसी समय खोजी जी भी आ गए, जब देखा कि गुरुजी को तो घंटा भी नहीं बजा, गुरुजी चले गए, खोजी जी भी आ गए, सब लोग वहाँ परेशान, जितने भी घंटा तो बजा नहीं, गुरुजी कहाँ चले गए, गुरुजी का यानी भगवान से मिलन नहीं, और झूठ तो बोलेंगे नहीं गुरुजी कि घंटा बजना चाहिए था भगवत धाम जाने पर, तो भगवत साक्षात्कार होने पर उनका नहीं हुआ, इसका मतलब मिलन नहीं हुआ भगवान से, इसका मतलब तो गुरुजी कहाँ गए। खोजी जी जानते थे कि भाई गुरुजी तो हमारे उस अवस्था में थे कि ये तो भगवान धाम जाना चाहिए था, इन्हें भगवान के लोक में ही जाना चाहिए था, ऐसे तो नहीं कहीं जा सकते, ऐसी क्या घटना घटी है। ऐसे ही इस पर एक दृष्टांत है महाभारत का ही, कि महाभारत में एक भक्त होते हैं, स्वपच्च भक्त हैं वो, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा था, एक शंख रख दिया था जब युधिष्ठिर का यज्ञ किया था युधिष्ठिर ने, कि जब तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तो शंख अपने आप बच जाएगा। शंख नहीं बजा, सब कुछ सब कोई जीम के चले गए, शंख बजा नहीं। युधिष्ठिर ने कहा फिर श्री कृष्ण जी से, शंख तो बजा नहीं, तो भगवान बोले यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तुम्हारा, पूर्ण कैसे होगा महाराज, बोला कोई एक व्यक्ति बचा है। युधिष्ठिर ने पूछा महाराज वैसे ढूंढने जाएंगे इतना बड़ा नगर, वहाँ हमें पता नहीं चलेगा, आप ही बता दें कौन बचा है। उन्होंने बताया एक जो यहाँ पे सफाई कार्य करता है, तुम्हारे घर का सारा कूड़ा वूड़ा जो भी यहाँ की सब कुछ लेके जाता है, उस आदमी ने तुम्हारे यज्ञ में भोजन नहीं किया है, और वो बहुत बड़ा भक्त है, तो आप उसे भोजन कराओ, वो संतुष्ट नहीं होगा तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तुम्हारा। तो और अर्जुन को और भीम को भेजा हूँ उसे लाने के लिए, तो उसको लेने के लिए गए अर्जुन और भीम, और ये भगवान ने सख्त हिदायत दी थी कि आज्ञा नहीं देनी है उसको, प्रार्थना करके लेके आना है। तो ये गए तो भंगी था बेचारा, झूठी बर्तन पत्तल सारा कूड़ा कचरा साफ करता था। उसके घर जब अर्जुन और भीम स्वयं गए तो डर गया, वो महाराज आए हैं, महाराज आए हैं। और ये दोनों ही अर्जुन और भीम दोनों ने ही लेट के प्रणाम किया उसको, वो और भी डर गया, महाराज ऐसा मत कीजिए आप, वो बोला। और उसके घर में देखा उन्होंने भगवान का, कि भगवान की यहाँ सेवा होती है, हो यहाँ तो ठाकुर जी विराजमान किए हुए हैं, तो ये बड़े खुश हो गए अर्जुन भी और भीम भी। खैर उसको फिर ये पालकी में लेके आए, वो आना नहीं चाह रहा था इनके यहाँ कि मैं, लेकिन उसको पालकी में बिठा के दोनों भाई लेके आए, और उसको फिर राजमहल में जब ले गया, वो बाहर ही बैठ गया, नहीं हम यहीं कर लेंगे भोजन, भोजन के लिए बुलाया तो भोजन बाहर कर लेंगे, बोले नहीं अंदर चलो। अंदर उसको लेके गए और द्रौपदी जी ने अपने हाथों से पकवान बनाए हुए थे उसके लिए, उसको अकेले में बैठा के रसोई परोसी गई, परोसी द्रौपदी जी परोस रही थी, पाँचों भाई खड़े हुए थे, युद्ध और ये अपना भगवान श्री कृष्ण जी भी वहीं थे परोसी, तो जो भी अलग अलग पकवान थे उसने सारे एक साथ मिला लिए, एक साथ मिला के खाने लगे। तो द्रौपदी के मन में आया कि मतलब ये भी गरीब आदमी भी गरीबी होता है, उसे खाने का कुछ नहीं पता होता, इसे कुछ नहीं पता है खाने का। तो वो अंदर गई, शंख फिर भी नहीं बजा। युधिष्ठिर ने फिर भगवान की तरफ देखा, महाराज अब तो ये भोजन भी कर रहा है फिर भी शंख नहीं बजा है। बोले कि आओ द्रौपदी से पूछते हैं इसका कारण। वो गई द्रौपदी के पास, क्या वो कहने लगी कि सही में मेरे मन में तो है ही है कि ये तो है ही नीच कुल का है, इसे कुछ खाने वाने का नहीं पता है, ऐसे खाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि द्रौपदी को बाहर लाओ, इसके सामने ही पूछते हैं ऐसा क्यों इसने किया है। तो द्रौपदी बाहर आई, पांचों पांडव थे, श्री कृष्ण जी, उस भक्त से पूछा कि आपने एक साथ क्यों ये सब मिला के खाया, अलग अलग क्यों नहीं खाया। तो भगवान ने द्रौपदी की तरफ इशारा किया कि ध्यान से सुनो। उसने कहा कि महाराज अगर मैं ये सब अलग अलग खाता तो मुझे वस्तुओं का स्वाद आता, वस्तु स्वाद लेता मैं, मेरी प्रसाद बुद्धि खत्म हो जाती इसमें, लेकिन ये तो भगवान का प्रसाद है, सब सबको मिला लेके मिला लिया तो प्रसाद का कोई स्वाद, प्रसाद का तो अलग ही अपना स्वाद होता है, वस्तुओं का स्वाद क्यों लूँ, मैं तो भगवान के प्रसाद का स्वाद लेता हूँ। ये बात सुन के उनकी आँख खुली, द्रौपदी जी ने उसके चरणों में प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे मन में तो जो आपके प्रति था, आप तो बहुत उच्च कोटि के संत हैं। ये द्रौपदी के कहते ही शंख बज गया कि हो गया तुम्हारा भंडारा। इसी प्रकार यहाँ पे था कि इन्होंने कहा शंख बजेगा लेकिन नहीं बजा, इसका मतलब झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो खोजी जी जो है वहीं पे लेट गए जहाँ गुरु जी का वो थी, बोले चारपाई कहाँ थी गुरु जी की, यहाँ जहाँ शरीर त्याग किया यहाँ बिछाऊ वहीं पे, वहीं खुद लेटे। इन्होंने ऊपर देखा आम का पका हुआ फल लगा है, ये समझ गए कि गुरु जी के मन में आया होगा आम को देख करके कि इस आम का तो कितना सुंदर मीठा फल होगा ये, और इसका अगर ठाकुर जी को भोग लग जाता तो कितना सुंदर होता। उसी टाइम उनके प्राण निकल गए। तो ये बताते हैं कि अंतिम समय में जिस भी वस्तु की आपका चिंतन होता है आपको उसकी प्राप्ति होती है। तो राम नाम बोलते हैं ना, राम नाम निकलेगा मुख से तो राम नाम की प्राप्ति होगी। आपको जिस भी चीज़ का चिंतन होगा आपकी गति वैसी ही होगी। इनका चिंतन हुआ किसका, आम, आम का टेस्ट बहुत बढ़िया होगा, मतलब ये अगर भगवान को भोग लग के हमें प्रसाद मिलता हो आनंद आता। उसी समय प्राण निकल गए। तो खोजी जी ने वो आम तुड़वाया, आम तुड़वाया तो उसमें से खोला तो एक कीड़ा निकला, कीड़ा निकला तो जैसे ही वो बाहर की हवा लगी कीड़े को, खोला वो थोड़ी देर में कीड़ा मर गया और शंख बज गया। शंख बज गया तो चारों तरफ हो गए धूम। खोजी जी ने वो बात भी खोज ली। यहाँ पे दो लोगों के अलग अलग तर्क हैं, एक तो ये कि उनका ध्यान भगवान में गया कि भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाएं, तो क्या गुरुजी ही उस कीड़ा रूप में बन गए थे। कुछ संत कहते हैं कि नहीं, जब भगवान को अर्पण किया उन्होंने तो भगवान स्वयं कीड़ा बन के आ गए थे उसको भोग, क्योंकि वो भगवान भक्त के हृदय की वो तो सुनते हैं ना, पुकार सुनते हैं कि उन्होंने कहा कि ये भगवान को अर्पण होता, तो तुरंत ही भगवान ने कीड़ा स्वरूप में, तो जब वो यहाँ से निकले तो भगवान से मिलन न हुआ, कीड़ा रूप में भगवान है, यहाँ से खोला भगवान ने, यहाँ से ये त्याग किया तो मिलन हुआ। तो ये दो दृष्टांत इसके पीछे के बताते हैं, लोग दो तर्क देते हैं। तो वो जो भी हैं वो तो भगवान जाने, पर खोजी जी ने वो बात भी खोज ली। तो यही है भाई अंत कि जो भी आपका गति होती है अंत में जैसे विचार आते हैं वही गति मिलती है, भगवान ने गीता में भी कहा है। तो भगवान के ऐसे भक्त हैं, हमें निरंतर भगवान का नाम जाप करना चाहिए ताकि हमारी भी सदगति हो, भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, अंत में भगवान का नाम ही मुख से निकले, अंत भला सो सब भला। तो भक्तमाल के किसी और चरित्र में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री राधे राधे, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम, राधेश।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।